तारीख 15 फरवरी दिन शुक्रवार दिन भर नमस्कार। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले में मारे गए जवानों के घरों में मातम पसरा।
हम क्या कह सकते, हमारी दुनिया खत्म होगी, हम क्या कहेंगे।
भारत ने पाकिस्तान से छीना मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, प्रधानमंत्री मोदी ने दी चेतावनी।
बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
जम्मू दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ हुए प्रदर्शन।
जवान तो हमारे आज भी मरे हैं, तो अभी तत्काल सर्जिकल स्ट्राइक 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में हो।
करेंगे विश्लेषण की भारत क्या कर सकता है, कार्यक्रम में नहीं होगी विवेचना। डीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत सरकार ने दावा किया है कि उनके पास पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। गुरुवार को हुए इस हमले में सुरक्षा बलों के 40 से ज़्यादा जवानों की मौत हो गई थी। भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि कूटनीतिक तरीकों से पड़ोसी देश को अलग थलग किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है, हालांकि पाकिस्तान ने हमले में हाथ होने की बात से इनकार किया है। संसद से बजट पास ना करा पाने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस ने वक्त से पहले अप्रैल में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल कैटालोनिया के 12 नेताओं के खिलाफ विद्रोह, राजद्रोह और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अलगाववादी कैटल सांसदों ने बुधवार को सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पिछले 5 सालों में स्पेन में ये तीसरा आम चुनाव होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सांचेस के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कंजर्वेटिव ऑपोजिशन पॉपुलर पार्टी के नेता पाब्लो कसाडो ने कहा, ये चुनाव स्पेन के लोगों के लिए एक मौका है कि वो कैटालोनिया और दूसरे इलाकों से उठ रही स्वतंत्रता की मांग पर अपनी प्रतिक्रिया दे। इन चुनावों से फैसला हो जाएगा कि स्पेन उन पार्टियों के कब्जे में रहेगा जो इसे तबाह करना चाहती हैं, या पॉपुलर पार्टी के नेतृत्व में जो अलगाववाद की चुनौती को खत्म करने के लिए दूसरी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर एक समझौते पर पहुंच सकती है। ये थे कंजर्वेटिव अपोजिशन पॉपुलर पार्टी के नेता पाब्लो कसाडो के शब्द। म्यांमार की एक अदालत ने आंग सांग सूची के कानूनी सलाहकार कोनी की हत्या करने के दोषी 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। ये दोनों म्यांमार की सेना से जुड़े थे। इनके अलावा 2 और लोगों को 5 और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोनी जाने माने मुस्लिम लॉयर थे। उनकी 2 साल पहले यांगून एयरपोर्ट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोनी की हत्या के पीछे सेना का हाथ होने की बात कही जाती है, क्योंकि वो सत्ता पर सेना की पकड़ कमजोर करने के लिए संविधान में बदलाव करवाना चाहते थे। कोनी के परिवार के वकील ने कहा, हत्या के एक अन्य संदिग्ध जिया पियो को जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी हो। इसके लिए हम मामले को उच्च न्यायालय में लेकर जाएंगे। ये थे कोनी के परिवार के वकील के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के प्रमुख ने कहा है कि मध्य पूर्व में मिली हालिया हार के बावजूद इस्लामिक स्टेट और अलकायदा और हमले करने की योजना बना रहे हैं। म्यूनिक में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एलेक्स यंगर ने कहा कि जिहादियों की यूरोप वापसी को लेकर वो खासी चिंतित हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि अमरीका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत अगले हफ्ते वॉशिंगटन में भी जारी रहेगी। जिनपिंग ने यह बयान अमरीका के वरिष्ठ अधिकारियों और वित्त मंत्री स्टीव म्यूनिश से मुलाकात के बाद दिया। अमरीका के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को रूस से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। माइकल केलवे तेल और गैस निवेश के विशेषज्ञ हैं। चीन ने अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए माउंट एवरेस्ट का अपनी तरफ का बेस कैंप बंद कर दिया है। चीन प्रशासन का कहना है कि जब से लोगों को वहां कार से आने की अनुमति मिली है, तब से ये जगह काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी, जिसकी वजह से यहां बहुत ज़्यादा कचरा हो गया। चीन प्रशासन ने जनवरी में ये भी कहा था कि अब से हर साल सिर्फ 300 लोगों को ही उनकी तरफ से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। इससे पहले कि आज के हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको बता दें कि आज हम विवेचना प्रसारित नहीं करेंगे। अब आप इस विवेचना को रविवार को सुनेंगे।
मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
हम क्या कह सकते, हमारी दुनिया खत्म होगी, हम क्या कहेंगे पाकिस्तान को, हम किसी को कुछ नहीं कहना है, हमारी दुनिया खत्म होगी। चार दिन पूछेंगे, उसके बाद कोई पूछता नहीं। पहले भी इतना हुआ, क्या किया सरकार ने किसी के लिए, कुछ नहीं करेगी हमारे के लिए।
पुलवामा में कल हुए हमले के बाद पहले से ही गहरे तनाव से गुजर रहा भारत और पाकिस्तान का रिश्ता अब और खराब हो गया है। भारत ने आज दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला किया है। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वो राजनयिक क्षेत्र में उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली और देश के कई दूसरे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज दिल्ली में क्या कुछ गतिविधियां हुई, सुनिए हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली से।
पुलवामा हमले के मद्देनजर भारत ने पाकिस्तान की तरफ कड़ा रुख अपनाते हुए आज पाकिस्तान के राजदूत को तलब किया और पड़ोसी देश को कारोबारी रिश्तों में दिए जाने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे को वापस लेने का फैसला किया है। भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने पाकिस्तानी राजदूत सुहैल महमूद से कड़े शब्दों में कहा कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ पाकिस्तान जल्द से जल्द कार्रवाई करे। भारतीय विदेश सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को उन समूहों और व्यक्तियों पर तुरंत रोक लगानी चाहिए जो उसकी ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। इस हमले में अर्धसैनिक बल के 40 से अधिक कर्मियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने का फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में सुबह हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में लिया गया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि सीसीएस को प्रधानमंत्री ने फैसला किया और सीसीएस को सूचित किया कि व्यापार के क्षेत्र में पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाता है। अरुण जेटली ने आगे कहा कि भारत वो सभी कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान को राजनयिक हलके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जा सके। भारत का कहना है कि उसके पास हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का पुख्ता सबूत है। भारत ने मुंबई, पठानकोट और दूसरे कई हमलों में पाकिस्तान का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान ने इस हमले और दूसरे हमलों में शामिल होने की बात से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों ने सीआरपीएफ काफले पर पुलवामा में हुए हादसे के वक्त सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही है। राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा,
जिन लोगों ने ये किया है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है।
व्हाटएवर द कंट्री रिक्वायर्स, वी विल वर्क।
आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए जो भी आवश्यकता होगी, हम उसके लिए एक मुल्क के तौर पर साथ खड़े हैं। ये थे मनमोहन सिंह के शब्द। सीसीएस के अलावा प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सेना, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों की एक बैठक भी दिल्ली में बुलाई। दोपहर के आसपास गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे, जहां से कल के हमले में मारे गए सुरक्षा बलों के शव विशेष विमान द्वारा दिल्ली लाया गया है। इस बीच सीआरपीएफ ने 36 उन जवानों की फहरिस्त जारी की है जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है। सीआरपीएफ ने एक ट्वीट में कहा है, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, इस हमले का बदला लिया जाएगा। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना, गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे और वहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज घटनास्थल का दौरा किया और वहां जांच पड़ताल की। पुलवामा की जिस जगह पर यह हमला हुआ, हमारे सहयोगी रियाज मसरूर भी आज वहां पहुंचे। अब से कुछ देर पहले मैंने उनसे संपर्क साधा और पूछा कि आज भारत प्रशासित कश्मीर में क्या हुआ और आपने जो घटनास्थल का मंजर देखा वो बयां करें।
30 वर्ष में पहली बार ऐसा खतरनाक जाड़ा पड़ा है, जबरदस्त सर्दी है, आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे और बारिश हो रही थी, पूरा फॉगी था वो एरिया और एक डरावना सा मंजर था क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम था, क्योंकि उस राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ट्यूब पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था क्योंकि उसी सड़क पे वो बस जो है मलबे के एक ढेर की सूरत में वहां पे जमी है और वो तो मतलब उस बारूद से सुकड़कर लोहे के एक ढेर में बदल गई है, तो उसको ढक लिया गया था, फॉरेंसिक एविडेंस जाया ना हो जाए इसलिए वहां पे एक्सेस नहीं दी गई, दूर से बताया गया, तो वहां पे कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था, बहुत ही कम गाड़ियां चल रही थी सड़क पे और जो भी अधिकारी आ रहे थे वो कह रहे थे कि हमें अपना काम करने दीजिए क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है वो दिल्ली से भी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी जांच कर रही है। तो उसके बाद जो सीआरपीएफ है उन्होंने कहा कि चूंकि होम मिनिस्टर का विजिट है और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ को आना है तो अब आप यहाँ से चले जाएं, तो वहां से फिर मीडिया को खदेड़ा गया और कहा गया कि यहाँ से निकल जाएं। बाद में जो एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने कुछ टुकड़े उठाए वहां से जो कि अपेरेंटली लगता था कि एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो एक स्कॉर्पियो एसयूवी के हैं जिसमें एक्सप्लोसिव भर के उस बस से टकराया गया था। तो इसके बाद जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो यहाँ पे पधारे दौरे के लिए, उन्होंने पहले तो जो है श्रद्धांजलि अर्पित की वहां पे उन शवों पे फूलों की मालाएं चढ़ाकर और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की जिसमें बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था, मीडिया जो लोकल यहाँ जम्मू कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट कवर करता है उनको वहाँ पे एक्सेस नहीं दी गई, लेकिन बाद में उन्होंने बताया मीडिया से कि वो जो है पूरा देश इसमें एकजुट है, आतंकवाद के बारे में उन्होंने बात की और पाकिस्तान को दोषी ठहराया और कहा कि जो लोग पाकिस्तान से पैसा लेते हैं या पाकिस्तान की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं उनको भारत सरकार सिक्योरिटी प्रदान करती है और उस सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने जम्मू का जिक्र करते हुए कहा, चूंकि जम्मू में आज थोड़ी सी हिंसा हुई थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो सांप्रदायिक जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और किसी को ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो यहाँ पे सांप्रदायिक एकता जो है उसको बिगाड़े।
रिया साहब, ये बताएं कि अलगाववादियों की ओर से कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं?
जी देखिए, ये पिछले 30 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मारे गए हों और अलगाववादियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस पे जताई हो, अफसोस जताया हो, शोक व्यक्त किया हो, ये पहली बार है। हालांकि बहुत ही गार्डेड और बहुत ही नपातुला बयान दिया है यहाँ की जो 3 अलगाववादी नेताओं का फोरम है जिसमें सईद अली गिलानी, यासीन मलिक और मीरवाइज उमर फारूक है, उन्होंने इस बयान में कहा है कि उन्हें इस पर काफी दुख पहुंचा है क्योंकि उस बयान में लिखा है कि कश्मीरी जानते हैं क्योंकि रोज उनके बच्चे मरते हैं, वो अपने बच्चों को दफन करते हैं, इसलिए वो उन परिवार वालों के दर्द को जरूर समझते हैं जिनके प्यारे कल के हमले में मारे गए।
बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर बता रहे थे कि आज कश्मीर में क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस सीआरपीएफ हमले की जिम्मेदारी ली। भारत ने भी कहा है कि इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया और साथ ही उसे दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया। पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है, वहां की मीडिया इस हमले को कैसे देख रही है, बता रहे हैं इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता आसिफ फारूकी।
पाकिस्तान में अभी तक पुलवामा अटैक के बारे में कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहें कंसिडर्ड रिएक्शन नहीं आया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने कल रात को ही कह दिया था, इसको कंडेम किया था और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया या जो गवर्नमेंट के सर्कल्स हैं वो बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश ना करें। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं नईमुल हक, उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने भी हल्की फुल्के अंदाज में ये कहा कि इंडियन मीडिया शुड रिफ्रेन कि वो पाकिस्तान को इसमें इम्प्लिकेट करने की कोशिश करे। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान में और बड़ी खबरें जो है वो चल रही हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट, तो वो उस पे से फोकस को हटना नहीं देना चाहते। लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे काफ़ी बात हो रही है, ख़ास तौर पे उसमें जो एंगल आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या एक बार फिर इंडिया پاکستان کو الزام دے گا اس حملے کا اور کیا کوئی پاکستان کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن لے گا، تو اس کے بارے میں کافی سسپیشن بھی پایا جا رہا ہے کافی لوگوں میں، ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ڈر سا لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کہیں پھر انڈیا اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ایک بار پھر ڈی ریل نہ ہو جائیں جیسا کہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کرتارپورہ کے بعد کچھ ایسی امید بند رہی تھی پاکستانیوں میں کہ شاید انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو، لیکن اس حملے کے بعد شاید اس میں کچھ نیگیٹیوٹی آ رہی ہے۔ جو سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہے وہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کا ہے۔ کل رات سے ابھی تک جو مین نیوز چینلز ہیں ان کی ہیڈ لائنز میں یہ اٹیک جو ہے وہ تیسری یا شاید چوتھی خبر ہے، وچ از سرپرائزنگ، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس پہ بات تو کر رہے ہیں۔ اخبارات کا بھی یہی حال ہے کہ جو مین لیڈ ہے وہ نہیں تھی بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ لیڈ بھی نہیں تھی، ایک کہیں پہ تین کالم کی، کہیں پہ دو کالم کی اور کہیں پہ سنگل کالم کی یہ خبر لگی ہے۔
بی بی سی سنواددتا آصف فاروقی اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ وہاں کس طرح سے اس گھٹنا کو دیکھا جا رہا ہے اور کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے۔ کارکرم میں آگے ہم بات کریں گے کہ بھارت کے سامنے کس طرح کے وکلپ ہیں اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ سی آر پی ایف جوانوں پر حملے کے بعد جموں کے کئی علاقوں میں ہنسک پردرشن ہوئے، ہنسا کو دیکھتے ہوئے جموں کے کئی علاقوں میں کرفیو لگایا گیا، پرانے جموں میں ہنسا کے بعد سینا کو بلایا گیا۔ سنیے جموں سے ہمارے سہیوگی موہت کندھاری کی رپورٹ۔
جموں شری نگر راشٹریہ راج مارگ پر ہوئے چرم پنتھی حملے کے ایک دن بعد شکروار کو یہ نعرے جموں میں جگہ جگہ گونجتے رہے۔ شہر بھر میں وبھن راجنیتک دلوں کے سدسیوں نے پردرشن کیے اور راستہ روک کر پاکستان کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ غصائی بھیڑ نے نریندر مودی سرکار سے پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے حملہ کرنے کی اچھا ویکت کی۔ چرم پنتھی حملے کے ورودھ میں شکروار کو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے پورے جموں سنبھاگ میں بند کی کال دی گئی تھی۔ بند کے دوران کئی علاقوں میں اس حملے کے خلاف ہنسک پردرشن بھی کیے گئے۔ حالات قابو میں کرنے کے لیے جموں کے ضلع ادھیش رمیش کمار نے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا ہے۔ پرانے شہر میں علاقوں میں ہنسا کے بعد سینا کو بلایا گیا ہے۔ بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے جموں کے ڈویژنل کمشنر سنجیو ورما نے کہا حالات پر نینترن رکھنے کے لیے پریاپت سنکھیا میں پولیس ادھیکاری تعینات ہیں۔ جموں شہر اور کچھ باہری علاقوں میں جھڑپوں کی وجہ سے کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ادھیکاری اور چشم دیدوں نے بتایا کہ شکروار کو مسلم علاقوں میں پارک کی گئی کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ بند کو پوری طرح سے سفل بنانے کے لیے وبھن راجنیتک دلوں جس میں بھاجپا، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پینتھرس پارٹی اور وبھن دھارمک سنگٹھنوں نے اپنا سمرتھن دیا تھا۔ پینتھرس پارٹی کے چیئرمین ہرش دیو سنگھ نے بی بی سی ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا نریندر مودی نے پاکستان کو آتنکوادی دیش گھوشت کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟
نریندر مودی جی بار بار یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو آتنکی دیش گھوشت کیا جانا چاہیے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس کا کیا ہوا؟ کیوں پاکستان کو ٹیررسٹ نیشن ڈکلیئر نہیں کیا گیا باوجود اس کے کہ پاکستان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ پورے وشو میں سب سے خراب ہے اور وشو شانتی کے لیے پاکستان ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔
وہیں بی جے پی کے ایم پی جگل کشور نے کہا اس گھٹنا کے بعد پورا دیش یہ مانگ کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے۔
ہم سینٹرل گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پاکستان کے اوپر اٹیک کریں، ہمارے لوگوں کو تھوڑی شانتی ملے، جن لوگوں کے پریوار کے بچے گئے ہیں ان کے دلوں میں بھی تھوڑی شانتی ملے، ہم یہ چاہتے ہیں۔
فی الحال جموں شہر میں استھتی کو نینترن میں رکھنے کے لیے سینا لگاتار گشت کر رہی ہے۔ موہت کندھاری، بی بی سی، جموں۔
ادھر دلی میں نہ صرف پاکستان اچائیوگ کے سامنے پردرشن ہوئے بلکہ جنتر منتر پر بھی پاکستان کے خلاف نعرے لگے۔
جوان تو ہمارے آج بھی مرے ہیں، تو ابھی تتکال سرجیکل اسٹرائک 24 گھنٹہ 48 گھنٹہ کے اندر میں ہو تاکہ اس کو سبق ملے اور اس کو پتا چلے جو درد کیا ہوتا ہے۔
سبھی کشمیریوں کے لیے ہونا چاہیے، ان کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے تتکال رد کرنا چاہیے، یہ ہماری مانگ ہے۔ پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا۔
بی بی سی انڈیا بول۔
پردھان منتری کا اعلان، سی آر پی ایف پر حملہ کرنے والوں کو چکانی ہوگی بڑی قیمت۔ وپکش نے کہا ہم سرکار کے ساتھ، لیکن کیا اس سے بنے گی بات؟ بھارت پرشاسک کشمیر میں کیسے رکیں گے چرم پنتھی حملے؟ کیا ہونا چاہیے بھارت کا جواب؟ انڈیا بول میں رکھیے اسی وشے پر اپنی رائے۔ کاریکرم میں حصہ لینے کے لیے شنیوار 16 فروری کو شام 7:30 بجے مفت فون کریں 1811-7000 یا 1800-102-7001 پر۔
بی بی سی انڈیا بول۔
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान मारे गए उनमें से एक अवधेश कुमार यादव हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बहादुरपुर गांव के अवधेश सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। पूरे गांव में उनकी मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव वहां पहुंचे।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के बहादुरपुर गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पर अवधेश कुमार यादव, जो सीआरपीएफ के रेडियो ऑपरेटर थे, जिनकी पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में मृत्यु हो गई है, ये उन्हीं का गांव है बहादुरपुर। और जाहिर है कल से बहुत गमी का माहौल है, बहुत सारे लोग हैं इस गली में। दाहिने हाथ जो गली है, इस गली में अंदर जाने पर, थोड़ी दूर जाने पर उनका घर है और उनके परिवारजन अभी अंदर मौजूद हैं, जो लोग गमी में हैं। हमारे साथ गांव के लोग हैं, बहुत से लोग जिनसे हमारे भी बात हो रही थी। अवधेश जो थे वो करीब 4 वर्ष से कश्मीर में पोस्टेड थे, श्रीनगर में एज ए बतौर रेडियो ऑपरेटर, और करीब 7 साल उनको सीआरपीएफ में हो गया था नौकरी करते हुए। चंदौली गांव के रहने वाले हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके पिताजी से हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया। और उनके दोस्त जो उनके साथ बचपन में खेले कूदे हमारे साथ हैं, आपका नाम जान सकता हूँ
जी? राकेश यादव।
राकेश जी, राकेश जी कुछ क्या यादें हैं? जाहिर है बहुत दुखद घटना है और बहुत बड़ा नुकसान है आपके लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए। कुछ बताइए अवधेश के बारे में, कैसे इंसान थे?
अवधेश बहुत ही अच्छा लड़का था, होनहार था। 2001 से 2002 तक हमारे साथ 9 और 10 की क्लास में पढ़ा था
जी।
अच्छा लड़का था, बहुत व्यवहारिक लड़का था। सेना में जाने की शुरू से ही तमन्ना थी।
शुरू से उनकी तमन्ना थी सेना में जाने की। और उनके पिताजी ने बताया अभी हमें कि वो सोमवार को ही थे यहाँ पर, तो आपकी उनसे पिछली मुलाकातें जब भी हुई थी तो क्या बातें हुई थी?
बातें तो सब कुछ अच्छा बता रहा था। 11 तारीख को वो गए थे यहाँ से।
गांव अक्सर आते थे, यहाँ पर अक्सर आया करते थे, पिताजी बता रहे थे।
छुट्टी पर आते थे तो गांव आते थे,
जब भी छुट्टी पर आते थे तो यहाँ पर
दोस्तों मित्रों से मिलते थे जी। साथ में अधिक से अधिक समय दिया करते थे
जी, आप लोगों के साथ बैठा करते थे। अभी हमारे अवधेश के परिवार से बात हुई है तो उनके मुताबिक उनकी माँ को पिछले कुछ 2 सालों से काफ़ी बीमार रही हैं वो, उनको कैंसर की बीमारी थी। हालांकि उनके पिताजी का कहना है कि उनकी बीमारी का इलाज एक बहुत अच्छे अस्पताल में वो करवा रहे थे, और उनका कहना है कि उनका इलाज काफ़ी बेहतर हो गया था, काफ़ी ठीक हो गई थी पहले से। लेकिन जाहिर है परिवार को इस बात का वो बेहद अफसोस है कि उनकी माँ की बीमारी से ठीक होते ही उसके बाद ये खबर परिवार को मिली है। यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से लोगों का आना सुबह से लगा हुआ है। पूरे इलाके में एक तरह से गमी का माहौल है, सुरक्षा का बंदोबस्त काफ़ी है। करीब 1.25 किलोमीटर पहले से ही पुलिस की, सुरक्षा बलों की तैनाती है। बहादुरपुर गांव अवधेश का, जो एक रेडियो ऑपरेटर थे, सीआरपीएफ में सैनिक थे और जिनकी पुलवामा में हुए हमले में मृत्यु हो गई है।
ये थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हमले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि भारत के पास इस तरह के हमले रोकने के क्या कोई विकल्प हैं, या फिर इस तरह के हमले भविष्य में भी झेलने होंगे। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन से मैंने संपर्क साधा और पूछा कि अब भारत का जवाब क्या होगा।
मेरे ख्याल जो आज सीसीएस की मीटिंग हुई है उसमें कुछ इंडिकेशंस तो आई हैं कि जवाब क्या होगा, और पहला कदम उठा लिया गया है। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस था पाकिस्तान को, जो दिया गया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो पाकिस्तान जो हमसे इंपोर्ट करता था वो तो उन्हीं के लॉज के अकॉर्डिंग होता था, लेकिन जो वो एक्सपोर्ट करता था उस पर उनको रियायत मिलती थी MFN की, तो वो चली जाएगी।
लेकिन सिर्फ मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने से ही क्या बात बनेगी क्या?
नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला कदम है। जो अगर वित्त मंत्री की आप स्टेटमेंट सुने ध्यान से, तो उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी हैं कि भारत सरकार के तरकश में और भी तीर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, कूटनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और दूसरे इश्यूज पर। इसी के साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि फोर्सेस को अब खुली छूट दे दी गई है, उससे ये मतलब नहीं है कि फोर्सेज अब जंग की या जंग बंदी की डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन जो एक अपने ऊपर उन्होंने अंकुश लगा रखा था वो शायद हट जाएगा। तो एक तरीके का ज्यादा एक्शन देखेंगे, ना सिर्फ कश्मीर घाटी के अंदर जहां पर आतंकवादी सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन LOC के उस पार भी। अब वो LOC के उस पार एक्शन लेना मेरे ख्याल सरकार की एक लिहाज से मजबूरी भी है और राष्ट्र की जरूरत भी है।
सुशांत साहब, सरकार ने पिछली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई, और हमारे तमाम जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 का टाइम भी आ गया है। लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 जैसी कोई चीज़ उस समय तक कोई जानता नहीं था और ये अनायास एक उठाया गया कदम था, क्या इस बार भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं?
देखिए उसको सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या जो जो एक्शन होगा, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी या कोई और विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसमें भी तरकश में तीर है सरकार के पास।
कि सरकार के तरकश में जो तीर है, ये तीर क्या है, कौन कौन से तीर है, दो तीर की तो हम बात कर चुके हैं, बाकी विकल्प यानी तीर क्या है?
देखिए फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में भी काम करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं। आपकी जो एक आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, और आपकी जो मंडी है वो पाकिस्तान से ज्यादा आकर्षित है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेवरेज कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान में कोई अगर कंपनी जाकर निवेश करती है तो उसको भारत की मंडी से खारिज किया जा सकता है। बहुत सारी चीनी कंपनियां हैं जो भारत में भी पाकिस्तान में भी काम करती हैं, और चीन ने जिस तरीके का दोगलापन दिखाया है इस सारे मामले के ऊपर, तो चीन के ऊपर सिर्फ महज ये कह देना कि हम चीन से बात करेंगे, मेरे ख्याल वो वक्त निकल चुका है। तो चीन की कंपनियां और या चीन की जो आर्थिक इंटरेस्ट है भारत में, उस पर भी ठेस लगेगी। अब ये कई लोग बोलते हैं कि चीन का पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा आर्थिक इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उसकी तुलना भारत के साथ की जाए, जहां पर वो हर साल लगभग $60 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और ट्रेड बैलेंस लगभग $50 से $55 बिलियन वो हर साल भारत से कमाते हैं, और टोटल निवेश उन्होंने जो पाकिस्तान में किया है या टोटल जो उनकी ट्रेड है पाकिस्तान से वो कोई $17-18 बिलियन की है, अगर पाकिस्तान जैसे दिवालिया मुल्क में वो जाकर के धंधा करना चाहती हैं और भारत की मंडी खोलना चाहती हैं तो उनकी मर्जी है। तीसरी चीज, पाकिस्तान की जो इस तरीके की एक्सपोर्ट्स हैं उसका भारत बड़े आराम से सेंध लगा सकती है अपने एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करके, तो आर्थिक तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। कूटनीतिक तौर पर भी काफी हमारे पास विकल्प हैं जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, चाहे वो IMF हो या और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, वहां पर भारत अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है।
सुशांत साहब, ये तो आपने आर्थिक नाकेबंदी की बात की, लेकिन फौजी स्तर पर क्या कुछ होगा?
उसमें आप क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर सकते हैं, आपके पास शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर, आप हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कोवर्ट कैपेबिलिटीज हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज जहां पर आपने अपने ऊपर अंकुश लगाया हुआ था, जो पाकिस्तान की अंदर की फॉल्ट लाइन है जिस पर आप दखलंदाजी नहीं कर रहे थे क्योंकि यही किसी भी रिस्पॉन्सिबल देश का धर्म है, लेकिन अब वो धर्म कर्म का मामला तो सुलट गया है ना, अब तो आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा।
क्या भारत में वैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं या हो चुकी हैं जिसके तहत भारत को फर्म्ड एक्शन की जरूरत महसूस हो रही है?
देखिए हमको वो पसंद बात हो ना हो, लेकिन एक चुनावी मजबूरी है, एक राजनीतिक मजबूरी भी है, तो मेरे ख्याल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अब जरूरी है कि सिर्फ चुप करके, उसकी निंदा करके, घोर निंदा करके, भत्सना करके बात को खत्म कर दिया जाए, मेरे ख्याल उसका वक्त अब निकल गया है, और ना तो जनता और ना सरकार अब इस चीज को ज्यादा देर टॉलरेट कर सकती है।
पुलवामा हमले के बाद भारत के पास तरकश में कौन कौन से तीर हैं, भारत क्या क्या कर सकता है या करेगा, विश्लेषण कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप bbchindi.com के पन्ने पर जाएंगे तो आप एक खबर पाएंगे कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने अपना पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया है, उन्होंने इस के बारे में कई ट्वीट किए हैं, और पुलवामा मजाक उड़ाने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र निलंबित कर दिया गया है। कार्यक्रम में इससे पहले आगे बढ़े मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। भारत सरकार ने दावा किया है कि उनके पास पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। गुरुवार को हुए इस हमले में सुरक्षा बलों के 40 से ज्यादा जवानों की मौत हो गई थी। संसद से बजट पास ना करा पाने के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वक्त से पहले अप्रैल में आम चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल कैटालोनिया के 12 नेताओं के खिलाफ विद्रोह, राजद्रोह, पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद अलगाववादी कैटल सांसदों ने बुधवार को सरकार से समर्थन वापस ले लिया। म्यांमार की एक अदालत ने आंग सांग सूची के कानूनी सलाहकार को नी की हत्या के दोषी दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है। ये दोनों म्यांमार की सेना से जुड़े थे। इसके अलावा दो और लोगों को 5 और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल कुमार। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।